कविताओं, कहानियों, गीतों, गजलों का नायाब ब्लॉग। लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंदी युग्म, अपनी बात अपनी भाषा में।
हिंदी युग्म की ओर से मैं मृदुल कीर्ति अमेरिका से कवि सम्मेलन के सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को नमन करती हूँ। कवि सम्मेलन के बाद की मिली हुई प्रतिक्रियाओं की हम बहुत ही आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि आपके पत्र ही हमारा मापदंड हैं, आपकी समीक्षाएं हमारा उत्साह बढ़ाती हैं, और यही हमारी संपदाएं भी तो हैं। एक एक पग धरते हुए हम कवि सम्मेलन के छठे चरण में आ पहुंचे। पग से पग की क्रमबद्धता मंजिल की ओर ले जाती है, हर पग मंजिल का ही हिस्सा तो है। आखिर इस यात्रा में हमारे साथ चलता कौन है? समय ही तो उंगली थामकर हमें चलाता है। समय का ही अर्थ है कि सम अर्थात समान, आय अर्थात गति, वो सत्ता जो समान रूप से हमारे साथ रहती है। क्षण क्षण के छोटे परिवर्तन, युग के युग करते आवर्तन, गत आगत और वर्तमान, इसकी ही ताल करते नर्तन। यह युग संवत्सर आदि कल्प, क्षण क्षण ही होते अल्प अल्प, पदचाप मौन यह साथ कौन, चल रहा कदाचित समय मौन। एक समय मुख्य है शेष गौड़, सत्ता उसकी ही सार्वभौम। अहम कालोऽस्मि का उद्घोष स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में किया है। मैं ही समय हूँ, मैं ही काल हूँ, पर हम तो तत्कालदर्शी हैं और वो त्रिकालदर्शी है। ये प्रकृति भी त्रिगुणात्मक है, सत रज तम तीनों की प्रधानता के आधार पर समय की धारा बदलती है। तम की प्रधानता होने पर जब धर्म का विनाश होता है, अशांति और अराजकता होती है, तब दिव्य शक्तियों का अवतरण होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म धरा पे नसावती हैं, अधर्म हूँ पाँव पसावती हैं, तब धरनी धर तन धारे धरा पे धर्म को आन बचावती हैं। समय की अपनी पुकार, अपनी मांग होती है। तामसी वृत्तियों का पसारा जब बढ़ता है, तब कृष्ण भी मुरली की धुन छोड़कर पांच जन शंख से युद्ध का उद्घोष करते हैं। हाथों में मुरली की जगह सुदर्शन चक्र लेते हैं। यही समय का दर्शन है। इसी भाव को सौगात शीर्षक से लावण्य शाह जी अमेरिका से मुखरित हो रही हैं। सौगात शीर्षक से लावण्य शाह जी एक आध्यात्मिक काव्य रचना आपको सुनाने जा रही हैं। वो इन्हीं भावों का संचरण कर रही हैं। लावण्य शाह जी, आप आए और मुखरित हो।
कविता का शीर्षक है सौगात। जिस दिन से चला था मैं वृंदावन की सघन घनी कुंज गलियों से, राधे सुनो तुम मेरी मुरलिया फिर ना बजी, किसी ने तान वंशी की फिर ना सुनी, वंशी की तान सुरीली तुम सी ही सुकुमार सुमधुर कली सी, मेरे अंतर में घुली मिली सी, निज प्राणों के कंपन सी, अधर रस से पली पली सी, तुमने रथ रोका आहा राधिके, धूल भरी ब्रज की सीमा पर अश्रु रहित नयनों में थी पीड़ा कितनी सदियों की, सागर के मंथन से निपजी भाव माधुरी, सौंप दिए सारे बीते क्षण वह मधुचंद्र रजनी, यमुना जलकण सजनी, भाव सुकोमल सारे अपने, भूत भव के सारे वे सपने, नीर छलकते हल्के हल्के, सावन की बूंदों का प्यासा, अंतर मन चातक पछताता, स्वाति बूंद तुम अंबर पर गिरी सीप में मोती बन, मुक्ता बन मुस्काती अविरल सागर मंथन सा मथता मन, बरसता जल जैसे अंबर से मिल जाता दृग अंचल पर, सौंप चला उपहार प्रणय का मेरी मुरलिया मेरा मन। तुम पथ पर निस्पंद खड़ी थी तुम्हें देखता रहा मौन शशि, मेरी आराध्या प्राण प्रिय मन मोहन में तुम मेरी सखी। आज चला वृंदावन से, नहीं सजेगी मुरली कर पे, अब सुदर्शन चक्र होगा हाथों पे, मोर पंख की भेंट तुम्हारी सदा रहेगी मेरे मस्तक पे। धन्यवाद।
लावण्य शाह जी से ही हम एक दूसरी रचना सुनते हैं जो उनके पिता श्री नरेंद्र शर्मा जी द्वारा रचित है और माया शीर्षक से वो एक और आध्यात्मिक रचना जिसमें माया के विविधा रूपा होने के दर्शन को उजागर किया है, या माने जो माँ माने नहीं है, जो है ही नहीं लेकिन भासती है, इसी आभास को हम यथार्थ मान लेते हैं, यहीं से असत का जन्म होता है। लावण्य जी, आप माया के दर्शन का अगला पृष्ठ खोलें।
रचना का शीर्षक है माया, रचने वाले हैं स्वर्गीय पंडित नरेंद्र शर्मा। माया दिखाती पहले धूप रूप की, दिखाती फिर मटमैली काया, दुहरी झलक दिखाकर अपनी मोह मुक्त कर देती माया। असंभाव्य भावी की आशा, पूर्ति चरम शाश्वत आपूर्ति की, ललक कलक में झलक दिखाती अनासक्त आसक्ति मुक्ति की। अंत सत्य को सुगम बना तू हरि की अगम अछूती छाया, मन में हरि रसना पर षडरस, अधर धरे मुस्कान सुहानी, हरि तक उसे नचाती लाती हरि की जिसने बात न मानी। शकुन दिखाकर अंध तनय को हरि माया ने खेल दिखाया, संज्ञाहत हो या अनात्मा रथ, आत्म मुग्ध या आत्म प्रपंचक, पहुंचाया है हर झूठे को माया ने झूठे के घर तक। लगन लगाकर मोह मगन को मृग लाल जल निधि पार कराया, अहंकार को निराधार कर निरंकार के सम्मुख लाती, गिरिजा पति का मान बढ़ाने रति के पति को भस्म कराती। नेह लगाया यदि माया से, निज को खो हरिहर को पाया, अपनी समझ लिए हर कोई, करता रहता तेरी मेरी, वो अनेक जन मन विलासिनी, एकमात्र श्री हरि की चेरी। मैंने इस सहस्त्र रूपा को राममयी कह शीश झुकाया। धन्यवाद।
अभी माया से मायातीत तक की यात्रा दर्शन हमने सुना, बहुत ही सारगर्भित रचना है। अहंकार को निराधार कर निरंकार से जा मिलवाया। अब हम आपका परिचय श्री सत्यनारायण शर्मा जी कमल से करवा रहे हैं। कानपुर निवासी लगभग 80 वर्षीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी की सेवानिवृत्ति के पश्चात हिंदी साहित्य काव्य विद्या से जुड़े हुए हैं। स्मृतियों की परछाइयां और कश्मीर का महाभारत शीर्षक से दो प्रकाशित काव्य संग्रह हैं। आप पंत प्रसाद और महादेवी वर्मा जी की कृतियों से बहुत प्रभावित हैं। आप उसी कविता के उपासक हैं जो अंतस को छूकर तीस पैदा करे, मर्म तक जाए। मर्म स्पर्शी कविताओं के पक्ष में आप हैं। और सच पूछिए, मैंने अभी इनका ब्लॉग देखा था, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं। हिंद युग्म से श्री कमल का प्रथम परिचय है, अतः इस बार उनके द्वारा प्रेषित रचना को स्वर दे रहे हैं पिट्सबर्ग से श्री अनुराग शर्मा जी। कविता का शीर्षक है विरह व्यथा। विरह का पक्ष ऐसा है जिसके बारे में मैं अपने दो शब्द कहूं तो, कछु दुख होत जगत में ऐसे, जैसे हियमा लागी फांस, हर पल सांस चुभन अति कसकन, कैसे लूं अब अगली सांस, जाकी लगी सोए गति जाने, या जाने जो देवन हार, को कही सके पीर की पीड़ा, ना कोई वचन बतावन हार। अनुराग जी श्री कमल जी की रचना को स्वर दे रहे हैं। अनुराग शर्मा जी, आप आएं और कमल जी की रचना को मुखरित करें।
बाट जो हती रही खड़ी खड़ी पुकारती, प्राण तुम चले गए पथ रही निहारती, प्रीति पगे स्वप्न सभी अकस्मात खो गए, नयन पट खुले रहे कपाट बंद हो गए। ठगी ठगी खड़ी रही व्यतीति को नकारती, बाट जो हती रही घड़ी घड़ी पुकारती। समीकरण न हल हुए तमाम उम्र खप गई, प्रश्न अनुत्तरित रहे जिंदगी सिमट गई। ज्ञान्त सूत्र के प्रयोग रह गई खंगारती, बाट जो हती रही घड़ी घड़ी पुकारती। प्रकाश की तलाश में हताश सांझ ढल गई, सांस सांस में पली मिलन की आस टल गई। पुछे दिए उजास के लिए रही संवारती, बाट जो हती रही घड़ी घड़ी पुकारती। वो कौन श्राप था बाहर का सिंगार छर गया, किस अदृष्ट की कुदृष्टि से शगुन बिखर गया। इसी रहस्य पर पड़ी परत रही उघारती, बाट जो हती रही घड़ी घड़ी पुकारती। नियति के प्रहार की त्रासदी समेट ली, मीत से मिली जो पीर गीत में लपेट दी। खाओ के रिसाओ लेखनी रही उतारती, बाट जो हती रही घड़ी घड़ी पुकारती। प्राण तुम चले गए पथ रही निहारती, बाट जो हती रही घड़ी घड़ी पुकारती। धन्यवाद।
हिंदी हुक्म के सभी श्रोता श्री अनुराग जी के तकनीकी सहयोग से परिचित हैं और उनके अपने काव्य कथन का अंदाज भी निराला है, इससे भी परिचित हैं। बात कही और नमस्ते, फिर उनके उसी अंदाज का चलिए आनंद लेते हैं। मर्म और बसंत शीर्षक से उनकी रचनाएं। अनुराग शर्मा जी, आप आए और मुखरित हो।
आवाज के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरी पहली कविता का शीर्षक है मर्म। जीवन का जो मर्म समझते लंबी तान सदा सोते ना, तत्व तो एक कोयले हीरे में रख कोयला हीरा खोते ना। फल जहरीले दिख पाते तो बीज कनक के यूं बोते ना, यदि सार्थक कर पाते दिन तो रातों को उठकर रोते ना। इस कविता का शीर्षक है वसंत। मन की उमंग ज्यों जल तरंग, कोयल की तान दैवी रसपान। टेसू के रंग यारों के संग, बालू पे शंख तितली के पंख। इतराते बच्चे फूलों के गुच्छे, बादल के लच्छे फल अध कच्चे। रक्ताभ गाल और बिखरे बाल, सर्दी का अंत मधुरिम वसंत। धन्यवाद।
बसंत आने पर मन मादक हो जाता है, उस मादकता को पारुल जी अपने स्वर में उतार रही हैं। पारुल जी भारत बोकारो से हैं और पारुल जी का परिचय उनका अपना स्वर माधुर्य है। वे सुकंठी हैं, सरस्वती वाणी वागेश्वरी स्वर माधुर्य का प्रसाद इन्हें दे चुकी हैं। चलिए इनके स्वर माधुर्य का पान करते हैं और उनकी रचना भोर भई तकते पिय का पथ, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर तरीके से गाई हुई रचना, उनके स्वर माधुर्य का पान करते हैं।
भोर भई तकते पिया का पथ, आए ना मेरे प्रियतम वाली। भोर भई तकते पिया का पथ, आए ना मेरे प्रियतम वाली। भोर भई तकते पिया का पथ, आए ना मेरे प्रियतम वाली। झुलाया, सपनों का गलहार बनाया, चंद्र किरण ने झूला झूलाया, सपनों का गलहार बनाया, मेरे प्रियतम में डाली डाली, झूलों अकेली सावन में निराली, कान्हा बिन राधाल मेली, लाज कापती थर थर चमेली, कान्हा बिन राधाल मेली, लाज कापती थर थर चमेली, भोर भई तकते पिया का पथ, आए ना मेरे प्रियतम वाली, प्यार का दियला प्रीत की बाती, दोनों जले पिया सारी सारी राती, बिखरे थे कितने अंबर में तारे, गिने नयन गिन थके हमारे, दया न मन में चैन पड़े, कितने अकेले हम हैं खड़े, दया न मन में चैन पड़े, कितने अकेले हम हैं खड़े, भोर भई तकते पिया का पथ, आए ना मेरे प्रियतम वाली, कान्हा बिन राधाल मेली, लाज कापती थर थर चमेली, दया न मन में चैन पड़े, कितने अकेले हम है खड़े।
इसी भाव प्रवाह में हम एक और रचना सम्मिलित करते हैं श्रीमती पूजा अनिल जी की, जो स्पेन से हैं। आप पिछले 8 वर्षों से स्पेन में हैं। हिंदी युग्म से परिचित होते ही हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए मन बना लिया और सदा ही सहयोगी मन बना रहा। आज भी बहुत सहयोग देती हैं वो। दूर देश में हिंदी का कोई भी माध्यम अपनेपन का आभास तो देता ही है। इनकी रचना हल्की हल्की शीर्षक से गेय गीत के रूप में श्रीमती पूजा अनिल जी आप आए और मुखरित हों।
हल्की हल्की परछाई सी चांदनी गाती है, हल्की हल्की परछाई सी चांदनी गाती है, तेरी यादों पर ना पहरा आती है जाती है, हल्की हल्की परछाई सी चांदनी गाती है, उड़ते उड़ते कोई बदली छूकर बरसती है, चुलबुली सी तेरी शरारत याद दिलाती है, उड़ते उड़ते कोई बदली छूकर बरसती है, चुलबुली सी तेरी शरारत याद दिलाती है, तेरी यादों पर ना पहरा आती है जाती है, हल्की हल्की परछाई सी चांदनी गाती है। रुंझुन बूंदों की सुन सुन नींद खुमारी में लगता जैसे तेरी पायल गीत सुनाती है। रुंझुन बूंदों की सुन सुन नींद खुमारी में लगता जैसे तेरी पायल गीत सुनाती है। तेरी यादों पर ना पहरा आती है जाती है। हल्की हल्की परछाई से चांदनी गाती है। चंदा के पीछे से छुपकर मैंने देखा तुम्हें, सामने आऊं तो बन के खुशबू तोड़ जाती है। चंदा के पीछे से छुपकर मैंने देखा तुम्हें, सामने आऊं तो बन के खुशबू दूर जाती है। तेरी यादों पर ना पहरा आती है जाती है। हल्की हल्की परछाई सी चांदनी गाती है। हल्की हल्की परछाई सी चांदनी गाती है। तेरी यादों पर ना पहरा आती है जाती है। हल्की हल्की परछाई सी चांदनी गाती है।
मन थोड़ा सा हल्का हुआ है तो चलिए थोड़ा सा हंस भी लेते हैं। शन्नो जी लंदन से उत्तर और बिहार शीर्षक से एक हास्य रचना को सुना रही हैं। वैसे तो संसार पीड़ा में ही है अधिकांश। हम कुछ हास्य के क्षण अपने लिए सृजित कर लेते हैं, क्योंकि किसी को हंसा पाना या खुशी दे पाना किसी वीरता से कम नहीं होता। काव्य के नौरसों में हास्य रस को ही सबसे कठिन माना गया है, क्योंकि किसी को हंसा पाना बहुत कठिन होता है। देखते हैं शन्नो जी लंदन से अपनी रचना में लड्डू बिखेर कर हमें कितना हंसा पा रही हैं।
शीर्षक है उत्तर और बिहार का पंगा। बस जब आई भरी खचाखच, कुछ लोग चढ़े कुछ गए उतर, धक्के से एक गिरा टोकरा जिसके सारे लड्डू गए बिखर। रुक गए एक सज्जन फिर जब गिरा टोकरा नीचे, देखा खड़ा था चिपका कोई सीधे उनके पीछे। खड़े थे वो धोती चप्पल में, कंधे पर संदूक उठाए, तेल से चिपके बालों में गांठ लगी चुटिया लहराए। पान भरा था मुंह में उनके और गले में पड़ा गौछा, पुचुर पुचुर थूका जमीन पर फिर आस्तीन से मुंह पोछा। बोले हमको भी जल्दी है बाबू, बस है अब चलने ही वाली, ऐसे आंख दिखाओ ना हमको, है साथ में हमरी घर वाली। बाबू जी बोले अरे हट दूर खड़ा हो मेरे से, वरना दूंगा ऐसा झापड़, आएगी नानी याद तुझे और गिरेगा दूर सड़क पर। धक्का देकर तूने मेरे है सारे लड्डू गिरा दिए, क्या छोड़ के आया आंखें घर पर जो कोई दिखा नहीं दाएं बाएं। चुटिया वाले बोले देखो अब हो जाएगी मारा मारी, हम कुश्ती में भी माहिर हैं, नाम है हमरा बनवारी। तुम क्या अपनी तमीज घर पर उतारी रखे आए हो, सर पर टोपा पहन लिया तो जेंटलमैन बनाए हो। है आप उत्तरी हम हो बिहारी, आओ हो जाए दो दो हाथ, अब आपने हमको ललकारा है, बढ़ गई है अब इतनी बात। तेरे जैसा मूढ़ बुद्धि का कोई अब तक ना देखा, ठीक है बाबू, अब देखो तुम ऐसा तीर है जब फेंका। हो गया सीध लड़ाई का, तब वहां पर अच्छा खासा जुट गई भीड़ तमाम, और फिर बन गया एक तमाशा। तू तू मैं हुई बहुत की, निकल सका ना कोई हल। तब कंडक्टर ड्राइवर से बोला, अरे भैया छोड़ इन्हें, अब जल्दी चल। धन्यवाद।
ये तो रही क्षणिकाएं मन को हल्का करने की, पर वास्तविकता तो यह है कि इस समय जो मैं एक हास्य और दुख की रचना एक साथ लाई हूँ, वास्तविकता के धरातल पर देखते हैं जीवन कितना विषम है, कितना कठिन है। बहुत ही दुखमय है जब हम सत्य को सच में हिम्मत नहीं होती, जब हम 26 नवंबर की वो घटना याद करते हैं जिसे कह पाने में भी मन भर भर आता है। इन्हीं भावों के लिए अब शोभा महेंद्र जी भारत फरीदाबाद से एक बहुत ही यथार्थ की रचना को लेकर मुखरित हैं, और हास्य रस के बाद एकदम बाद में इस रचना को लाने का मेरा आशय केवल यही है कि जीवन के दोनों पक्ष देखिए और वास्तव में जीवन और संसार पूरा ही दुखमय है, दुखों से भरा हुआ है। 26 नवंबर को देश में आतंकी हमले से द्रवित मन की जो छटपटाहट है वो कोई कल्पना नहीं है। ये कथित काल्पनिक काव्य नहीं, ये व्यथित सत्य के अंकन हैं, जो जिया वही बतलाए हैं, जो सही उन्हीं के क्रंदन हैं। वतन मेरा वीरान क्यों है, मैं ये उपवन बचाना चाहती हूँ, मैं अपना घर बचाना चाहती हूँ। शोभा महेंद्र जी बताना चाहती है कि ये भारत की भूमि है और ऐसा क्यों होता है, चलिए उन्हीं के स्वर में सुनते हैं।
नमस्कार। 26 नवंबर को देश में जो आतंकवादी हमला हुआ उससे दिल में हूक सी उठी, आंखें जलने लगी, समझ में नहीं आता पूछ दूं आतंकवादियों को, नेताओं को, देश की पूरी जनता को, शासन प्रणाली पर आंसू बहाऊं, बेईमान खुलेआम जनता को लूटते हैं, जनता कुछ नहीं कर पाती। कब तक हम इसी प्रकार और जनता को जलता देखते रहेंगे? हालात इतने कमजोर क्यों हैं? आइए मेरा साथ दीजिए, क्योंकि मैं अब एक गीत गाना चाहती हूँ, वतन ना बचाना चाहती हूँ, मुझे अपा जरा विश्वास दे दो, मैं अपना घर बचाना चाहती हूँ, मैं अब एक गीत गाना चाहती हूँ। रुदन और ईख ने हमको डरा, रुदन और चीख ने हमको डराया, हमारी हर खुशी पर डर कसाया, मैं डर सब डाना चाहती हूँ, निडर सबको बनाना चाहती हूँ, मुझे अपना जरा विश्वास दे दो, मैं अपना घर बचाना चाहती हूँ। ध्यान चाहूंगी, वतन मेरा करे वीरान वो क्यों, वतन मेरा करे वीरान वो क्यों, शरण घर में ही दुश्मन पाएगा क्यों, कमी कमी घर की मिटाना चाहती हूँ, मैं ये उपवन बचाना चाहती हूँ, मुझे अपना जरा विश्वास दे दो, मैं अपना घर बचाना चाहती हूँ। हमारी एकता खंडित हुई है, हमारी ताकतें सीमित हुई है, उन्हें विस्तृत बनाना चाहती हूँ, मैं टूटा घर बसाना चाहती हूँ, मुझे अपना जरा विश्वास दे दो, मैं अपना घर बचाना चाहती हूँ। अंतिम है, वतन के दुश्मनों को तुम जला दो, वतन के दुश्मनों को तुम जला दो, यह है भारत की भूमि ये बता दो, नयन उनके झुकाना चाहती हूँ, नमन तुमको कराना चाहती हूँ, मुझे अपना जरा विश्वास दे दो, मैं घर अपना बचाना चाहती हूँ। धन्यवाद।
कैसा कैसा जी में होता है कि क्या करूं जो ये विनाश रुके। शोभा जी, विगत 26 नवंबर की घटना की पीड़ा से सभी भारतीय क्या सभी संवेदनशील हृदय संवेदित हैं? ये हम सभी का दुख है, ये व्यक्तिगत नहीं वरन मानवीयता जो निर्ममता से कुचली गई है उसका दुख है, संतरास है। हम सब इस संवेदना में साथ हैं। जो दर्द हम दूर कर पाने में विवश होते हैं उसमें तो और भी अधिक छटपटाहट होती है। कितनी माओं के ही कुचले, कितनी मांगों का सिंदूर, इनकी भी अपनी भाषा है, लिखेंगी जो इनकी तकदीर। भारत गाजियाबाद से कमलप्रीत जी, जो एक वरिष्ठ और प्रतिष्ठित वास्तुक हैं, आकाशवाणी जयपुर से साहित्यिक एवं जनरुचि विषयों पर पंत का रचना संसार एवं प्राकृतिक अजूबे पर आलेखों की प्रस्तुति की है। युववाणी के अन्य लोकप्रिय कार्यक्रम जैसे महफिल और मन भवन में अपने आलेख और स्वर के साथ सुंदर फिल्मी गीतों की भी प्रस्तुति की है, और इस समय वो कविता शीर्षक से कविता की पृष्ठभूमि में मनोभावों की जो भूमिका है वो इस कविता का विषय है, सुनते हैं।
मेरी कविता का शीर्षक है कविता। जी हाँ, कविता कहने से कहीं पहले, कविता कहने से कहीं पहले एक भावावेग उठ आता है, पहले भी होता रहता जो एक नया अर्थ पा जाता है। भीतर की आंखों से देखना, भावों से छू पाना कहते, अनुभव के नव आयामों में व्याकुल मन उलझाना कहते। सुमधुर प्रातः शीतल बयार, सुमधुर प्रातः शीतल बयार, हृदयंगम कर जाना कहते। गर्मी की तपिश शीतल शरद का एक बिंब सुहाना लाता है, पहले भी होता रहता जो एक नया अर्थ पा जाता है। तंद्रिल सी आंखों का खुलना, तंद्रिल सी आंखों का खुलना, स्वप्नों को भूलना कहते। यथार्थ की सुंदर डालों का सुख सावन में झूलना कहते। बचपन के विस्मृत चित्र उभरना, नित प्रतिपल तुलना कहते। अतुलित आनंद की सीमाएं मुखराता है, पहले भी होता रहता जो एक नया अर्थ पा जाता है।
अब उनकी अगली रचना जो बड़ी सामयिक लगती है, नव वर्ष का आवाहन किया है। नव वर्ष की सुखद अनुभूति में उल्लसित मन को आज प्रभात, पक्षियों का कलरव और झरझर का बहाव सबका अपना नयापन है, अपना एक आनंद है। अतीत को झटक कर आगे बढ़ें, नव वर्ष में प्रवेश का उन्माद है और उल्लास ही तो ऊर्जा का स्रोत होता है कि नव वर्ष को आवाहन करने की रचना। नव वर्ष, हम सब भी उल्लसित मन से, आशावान चित्त से नव वर्ष में प्रवेश करें।
मेरी कविता का शीर्षक है नव वर्ष। प्रातः की इस वेला में नव प्रभात से अरुणोदय तक सब कुछ नया नया सा है। प्रातः की इस वेला में नव प्रभात से अरुणोदय तक सब कुछ नया नया सा है। आकाश के रक्ताभ क्षणों में खग वृंद का कलरव अन्य किसी सुबह से अलग सा क्यों है। निर्झर तो यूं ही बस बेरोक टोक बहा करता है, जिसकी चिर परिचित कल कल आज अपने आप में एक नवीनता समेटे हुए है। और मानव मानो सबसे अधिक सुखद अनुभूति को प्राप्त, परिवेश के प्रति जागृत उल्लसित है। जानता है वह झटक आया है भूत के अनगिनत क्षणों को केवल कुछ पलों के सहारे। नववर्ष के नए आयाम उसे नए सुअवसर प्रदान करेंगे। जानता है वह तभी तो आसपास सभी कुछ नया नया सा है उसके चेतन मस्तिष्क में भी।
नववर्ष मंगलमय हो, स्वस्तिमयी और कल्याणमय हो। किस मोहक गति से चलते हो, चुपचाप सब बदल सब देते हो। युग संवत्सर इतिहास सभी अपने पग तल में रखते हो। अनबरत तुम ही तो चलते हो, पर मौन की जिसका भान नहीं। कितनी द्रुत गति से चलते हो, इतना कि कोई अनुमान नहीं। कल काल त्रिकाल विराट स्वयं, मैं स्वयं समय श्री कृष्ण कहें। भव भूत भविष्य न वर्तमान, सब काल तुम्ही से जन्म रहे। काल जयी कृतियों के प्रकल्प में और मूर्धन्य कवियों की श्रृंखला में आज हम लाए हैं एक काल जयी भक्त कवि, जिसकी रचनाएं देश काल भाषा के बंधन को तोड़कर न केवल समस्त भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में पढ़ी जाती हैं और उनकी रचनाएं जनमानस के हृदय में रहती हैं। उनका नाम गोस्वामी श्री तुलसीदास, उनको कौन नहीं जानता। तुलसी के विषय में कुछ कहो या लिखो या बताओ, किसमें सामर्थ्य है। को समर्थ अथ कही सके, कौन बतावन हार। और तुलसी राम अनन्यता, राम ही जानन हार। रोम रोम में रमण करने वाले राम से करुण विनती गोस्वामी तुलसीदास ने की। सन 1532 में जन्मे संस्कृत के इस प्रकांड विद्वान ने बहुजन हिताय उस काल की जन भाषा अवधि में लिखना प्रारंभ किया, जब अवधि को हे समझा जाता था। उनकी कुल 22 रचनाओं में से रत्नावली, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस आज भी घर घर में मिल जाएंगे। गोस्वामी जी ने अपने समय के अभिजात्य वर्ग का विरोध सहकर भी हिंदी की विभिन्न आंचलिक बोलियों में लिखकर उनके महत्व को बढ़ाया। कम ही लोग जानते हैं कि उनका कृष्ण भक्ति संग्रह कृष्णावली कन्नौजी बोली में है। वैराग्य संदीपनी के दोहों में गीता ध्वनित होती है। तुलसीदास ने धर्म की विभिन्न शाखाओं यथा निर्गुण और सगुण, सांख्य और योग आदि में विरोधाभास ढूंढने के बजाय समन्वय पाया। उनके लोक मंगल के सिद्धांत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समाज सुधार का निमित्त बताया है। गांधी जी ने भारत के सर्वांगीण विकास को तुलसी के राम राज्य में ही पाया। नववर्ष का आह्वान हम मंगल भवन अमंगलहारी से करते हैं। सब तरह से सब प्राणियों का कल्याण हो, इसी भावना के साथ नववर्ष का आह्वान करते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरी बरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुरुष सब ही के, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरम, बोली गौरी हरष हिय भरम। हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप गवने दो भाई, सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनी आशीष दुहु भाई निदीनी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे, सतानंद तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए, मुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महीपाल।
कविता कहानी बाल रचना गीत संगीत सुनने के लिए लॉग ऑन करें हिंदयुग्म.com।